أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، إنسان کے جسم کے متعلق میڈیکل ریسرچ یہ ہے، انسان کی جو ساری باڈی ہے اس کا توازن اور اس کا مدافعت بیماری یا بیماریوں سے بچنے کی طاقت، تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے وٹامن سسٹم پر ہے. کئی قسم کے وٹامنز ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں، ان کی کمی بیشی یا زیادتی سے انسان کا جسم جو ہے بگڑتا رہتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکلی ان کو وٹامنس پرسکرائب کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی ہیلتھ کو کور کیا جاتا ہے. اگر توازن صحیح نہ ہو وٹامنس کا اور ٹھیک نہ ہو تو مدافعت بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جسم پہ مختلف قسم کے انسان کی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں قسم کی موذی بیماریاں انسان پہ سرایت کر جاتی ہیں، لیکن کہ انسان چلتا پھرتا رہتا ہے اس کو اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا. اچانک جب وہ طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر جا کے ڈاکٹر سے پتہ لگتا ہے. پہلے چیک اپ کراتا رہے آدمی اپنی صحت کو دیکھتا رہتا، الحمدللہ صحت یاب رہتا ہے. کیونکہ میں آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بالکل جسم کا جس طرح ہے، اسی طرح بالکل ہمارا جو دوسرا حصہ ہے روح، بالکل اس کا بھی تعلق ایسے ہے. جیسے جسم توانا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے، اس انسان کی روح جو ہے وہ بھی طاقتور ہوتی ہے. جسم بے شک کمزور ہے لیکن روح طاقتور ہوتا ہے، الحمدللہ آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے. جسم تو پھونک ہی ہوتے ہیں نا، وہ بس پھونک بھری ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل طاقت تو روح کی ہوتی ہے، سبحان اللہ. اس کی طاقت اب کھڑی ہو جائے روح کی تو پھر سامنے کون ٹھہر سکتا ہے اس سے. بس وہ ایک ہم ظاہری دنیا پر ہیں، وہ پھونک بلا لیں جسم کو تم کہتے ہیں بہت ماشاء اللہ مکہ اس کا سخت ہوگا، لیکن کسی روح والے کا مکہ کھا لے نا آدمی، وہ مکہ نہیں مارتا صرف نظر مارتا ہے، اللہ دیکھنے سے کام بن جاتا ہے اس کا. تو جیسے اب جسم کے ہے توازن کے لیے وٹامنس ہیں، صحیح وٹامن ہو تو صحیح کام کرتا ہے جسم، کھاتا پیتا بھی ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی ایک وٹامنس ہے. اور اگر وہ کم زیادہ ہو جائے تو روح بھی بیچاری اس طرح ہوتی ہے، پھر تو بہت کمزور ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، ڈیزیز آتی ہیں، مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو بھی ایسی بیماریاں لگتی ہیں جیسے جسم کو لگتی ہیں. اس کی بیماری ہیں دوسری نوعیت کی ہوتی ہیں. جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی ایک نشانی ہے، جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، جی چکر آ رہے ہیں، تبھی بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. لیکن افسوس روح کی بیماری کو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہے بہت خطرناک چیز. اس کی ایک نشانی آج بتا دوں آپ کو، ہم اپنی روحوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کس پوزیشن میں، طاقتور ہیں کمزور ہیں. عقل ہوگی تو پھر اس کا علاج کرائیں گے، نہیں تو پھر اللہ بھی لکھے تھے اس کو آخرتی بتائے گی، پھر موت ہی بتائے گی اس کو. بہت ضروری ہے جاننا वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस सम पे तो आप बहुत जान देते हैं ना, मालूम करें उस बीमारी का, इस हर्चिस बीमारी का, तो कभी रूह की बीमारियां जो है उसके बारे में तो आदमी सोचे। रूह जब बीमार होती है उसकी निशानी क्या है? जैसे जिस्म बीमार होता है तो उसकी निशानी पता है हमें, खाना पीना छोड़ देगा, बीमारी आ जाएगी। रूह जब बीमार होगी, कमजोर होगी, उसका विटामिन डिसबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा उसमें, तो उसकी क्या निशानी है रूह की बीमारी की? रूह की बीमारी की ये निशानी है कि जब कमजोर होती है तो क्या करती है? गुनाह शुरू कर देती है, उसमें ताकत नहीं रहती, शैतान गालिब हो जाता है, रूह कमजोर हो जाती है, दुश्मन मजबूत हो गया, रूह क्या मुदाफत उसको रोक के कैसे रोक, उसमें जान ही नहीं बेचारी में, उसमें विटामिन से नहीं है तो वो कैसे रोक सकती है? तो शैतान चौड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, नफ्स और मोटा हो जाता है, तो फिर वो क्या कराता है? खूब उससे गुनाह कराता है रूह से। जब देखें आप, अब ये निशानी पता लग गई, इंसान गुनाहों की तरफ रगबत है, गुनाह कर रहा है, गुनाहों की तरफ झुकाव है, रुक ही नहीं रहा, कभी कुछ हरकत करता है, कभी कुछ हरकत कर रहा है, कभी अंधेरे में कर रहा है, सभी लोगों के सामने कर रहा है, नमाज पढ़ते हुए कर रहा है, नमाज के बाद भी कर रहा है, रमजान भी कर रहा है, रोजों भी कर रहा है, हज भी हो जाती है, इबादत भी उसको नहीं रोक सकती। क्यों? इबादत कैसे रोकेंगे? इबादत आपको विटामिन तो नहीं देंगे, उसकी रूह की विटामिन तो नहीं देंगे, वो तो विटामिन, जब तक रूह की विटामिन क्या है अभी नहीं बताया ना मैंने, वो चाहिए। तो जिस तरह बैलेंस खराब हो जाए जिस्म का, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये विटामिन खाएं, तो रूह की जब बैलेंस खराब हो जाए तो उसको कौन प्रिस्क्राइब करेगा? उसके भी रूह के फिजिशियंस हैं, कंसल्टेंट हैं, अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाना पड़ता है कि ये तबीयत यह है, गुनाह हमसे रुक नहीं रहे और ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, और ज़ाहिर है कितनी भी इबादत हम लेके चले जाएँ, गिबतें होंगी तो सारी इबादत तो गिबत वाला ले जाएगा, झूठ बोलेंगे तो झूठ वाला ले जाएगा, किसी को थप्पड़ मारा तो वो ले जाएगा। इबादत भी हमारे जहाँ जोर हम लगा रहे हैं, इतनी हज उम्रे कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रातों को जाते हैं, फजर पढ़ रहे हैं, वो भी बेकार जाएंगी सारी। हमें तो चाहिए हम हज़रत को हमें इलाज दें हमें, ताकि हम गुनाहों से बचें। जिसको इलाज चाहिए सुभान अल्लाह बोले, माशाल्लाह दस्त लग गया एक जन्नत में अल्लाह के, इलाज भी ऐसे हैं इसके, देखें रूह के इलाज भी कैसे हैं। अब जिस जिससे गुनाह हो रहा है, और कोई हो गया नहीं ऐसा, सबसे पहले तो मैं हूँ ना मुजरिम, आपके सामने बैठा सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ जो गुनाह करता हूँ, आप तो नेक आदमी है। तब तो बहुत सख्त जरूरी है जानना चाहिए कि भाई कौन सा विटामिन है जिससे बैलेंस खराब हो जाता है, दूर होता है, गुनाह करता है आदमी, वो एक बैलेंस जो विटामिन है भाई वो क्या है जो कम होता है इंसान का, जब रूह गुनाह करती है, वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत। क्या है? अल्लाह की मोहब्बत कम होती इंसान, जितनी वो कम होगी उतनी रूह कमजोर होगी, और जितनी रूह कमजोर होगी उतनी गुनाह ज्यादा करेगी। अब जिस दर्जे पे गुनाह हो रहे हैं आप देख, इसका पता क्या है? अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, सवाब पैदा ही नहीं होता। कुरान कहता है कि तू मेरी मोहब्बत रखे और तू गुनाह करे, क्यों? जहां मेरी मोहब्बत होगी वहां तो रूह तेरी मजबूत होगी, और जब रूह मजबूत होगी शैतान की क्या मजाल के उसे गुनाह करा दे, नजदीक भी आ जाए उसके, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो नफरत कराएगी उसको, रूह नफरत कराएगी उन गुनाहों से, दूर कर देगी उससे। तो पता ही चलता है गुनाह जो हम करते हैं उसकी वजह क्या है, हमारे मोहब्बत नहीं है, दावे हैं खाली, मोहब्बत के दावे हैं। दावे की दलील तो यह है, गुनाह क्यों करते हो फिर, अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हो? सोचो अपने अपने दर्जे पे सोच ले आदमी। एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, बल्कि मजलिस में मौजूद थे, तो उन्होंने एक बेहतरीन सवाल किया, सुभान अल्लाह, बेहतरीन सवाल किया, और हम जैसे गुनाहगारों के लिए, पूरी उम्मत के लिए इसमें बड़ी शिफा है, बड़ी शिफा है। गौर से सुने इस बात को, बहुत शिफा है। कहने नहीं या रसूल सल्लम मुझे कोई नसीहत फरमा दे, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अब वो उनको थोड़ी नसीहत जाएगी तो पूरी उम्मत तक जाएगी नसीहत, अल्लाह के नबी की बात छुपने वाली है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अंधेरे में बोले आप तो बात क्यामत तक के लिए छप गई माशाल्लाह। ऐसी किताबें छप गई कि जो मिटी नहीं सकती। ऐसे ऐसे इमाम पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन पैदा कर दिए कि दिन रात जिनका काम यही है अल्लाह के नबी की हदीसों को फैलाओ फैलाओ फैलाओ। एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। ऐसे होता है एक शेख हदीस चला गया, कौन आएगा देखेंगे, उससे और अफसर आ जाता है। इमाम मालिक गए, शाफी आए, हनीफा आए, कैसे कैसे इमाम हम्बल आए, नाम गिनते चले जाएं क़यामत तक अल्लाह के फजल से। ये सब अहतमाम किसका किया है? अल्लाह ने, कि मेरे हबीब की हर बात पहुंचती चली जाए, रुके ना, क़यामत तक प्रचार होगा इसका। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, यही तो बुलंदी है नबी पाक सुन की, कि हर रोज़ नई हदीस पहुंचती है, हर हर रोज़ एक हदीस पर तहकीक होती है, और हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुहक्किकीन आरिफीन के जब उसी हदीस को पढ़ते हैं तो नए मुआरिफ नज़र आते हैं, उसमें से नए इरफान नज़र आते हैं हदीसों में। तो ये कोई रुकने वाली चीज़ है? तो उन्होंने क्या कहा, एक साहबी हैं बस बैठे हैं मजलिस में बैठ कर सवाल अर्ज कर दिया। कितना सादा सवाल है, नसीहत फरमाइए। अल्लाह वो नसीहत नबी करीम की नसीहत जो होगी मुझे बताएं कितनी कीमती नसीहत होगी हमारे लिए। कान खोल लें, दिलों को खोल लें और इस नसीहत को सीने पर उतार लें, काम बन जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मुख्तसर नसीहत सवाल था उससे भी कहीं कम दर्जे पर नसीहत करके पूरे दीन को बंद कर दिया एक दो लफ्ज़ में, जाओ प्यास बुझाओ अपनी। जो वाकई सादिक होगा, जिसको खौफ होगा अल्लाह के, अल्लाह के रसूल का, और जो अपने आप को सही करना चाहता होगा, ड्रामेबाज नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, सादिक होगा, पता है उसको मौत आने वाली है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की है अल्हम्दुलिल्लाह, उस नसीहत पे जो अमल कर लेगा अल्हम्दुलिल्लाह बाईमान जाएगा और जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? बहुत सादा इलाज उसी स्टैंडर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह सादगी के साथ फरमाया कि देख जब भी कोई काम करो, मतलब सुने, जब भी जो काम करो, ये लफ्ज है, जो भी काम करो ठीक, तो उस काम पर ये सोच लो, काम करने के वक्त ये सोचो, जो काम करो काम करते वक्त ये सोचो कि कहीं ये मेरा काम अल्लाह और अल्लाह की रसूल की नाफरमानी में तो नहीं हो रहा। बस सुभान अल्लाह, क्या खुश। जो काम करो काम करते हो ये सोचो कि कहीं इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ सरकार कसम की अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं है। जब ये मेयार इंसान जिंदगी का रख लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आम इंसान नहीं रहेगा बल्कि मुत्तकी हो जाएगा। रहा क्या बाकी? अब जो काम, हदीस के लफ्ज़ मुझे बताएं, जो काम, जो भी तो सब आ गए 24 आवर, हम किसी काम में तो हैं, सुबह से लेके शाम तक कोई तो काम कर रहे हैं, खाली तो होता नहीं आदमी। नींद भी काम है, उठना भी काम है, सोना भी काम है, हर वक्त इंसान किसी काम में है। जब भी कोई काम करे इंसान, जो काम भी कर रहा है, उस वक्त उसने ये सोचना है कि क्या आया जिस वक्त मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं हो रही। अब घर में है, बीवी बच्चों में है, दोस्तों में है, रिश्तेदारों में है, तिजारत पर है, मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर है, कारोबार में है, किसी से कॉन्टैक्ट कर रहा है, किसी से दोस्ती कर रहा है, शादी ब्याह मसाइल है, कोई भी जिंदगी का मसला है आपके सामने, आपने उस बात पर सबसे पहले क्या सोचना है? इसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं हो रही। जिस्म से लेकर अमल तक पूरा का पूरा मुकय्यद हो गया, बिल्कुल दायरे में आ गया एक ही चीज के, अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं। वो उसी वक्त आपको बता देगा काम, अगर नाफरमानी होगी उसी वक्त बता देगा कि तू सजा में आ गया, बरकत खत्म हो गई, तुझ पे अजाब आ गया, तो अल्लाह की नाफरमानी में ये काम कर रहा है, किसी से लेन देन कर रहा हूं, अब लेन देन के अंदर थोड़ा सा मुझे ख्याल आया कि मैं ज्यादा ले लूं या कुछ डंडी मारनी है, अब वहां एकदम ख्याल आएगा कि मैं लेन देन कर रहा हूं, अब मुझे ऐसा काम मुझसे हो गया कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही, झूठ नहीं बोलेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, बिल्कुल सादिक हो जाएगा, उस वक्त झूठ नहीं बोल सकता, बच गया ना गुनाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सा नुस्खा है तो जिंदगी का, ये तो इतना बड़ा मुकाम मिल जाता है आदमी, बस इसके तहत इंसान जिंदगी गुजारे, हर कदम जब भी है, हर बात जो कुछ भी करना है, मसला एक ही है कि इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं है कि? यही है, विटामिन वाली बात होगी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी बात। इस चीज को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन तक लाने के लिए, ये तो उसी वक्त होगा ना यार, इंसान के अंदर विटामिन होगा मोहब्बत का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही इलाज ही बताया कि ये जो कैफियत बता रहा हूं मैं, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। ये भी सुन ले, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूं, ये कैफियत तो मैंने बताई है करने की, लेकिन कितने लोग कर पाएंगे इसको? ये तो वही करेंगे जिसके अंदर विटामिन पूरा होगा, जहर जो कमजोर होगा, जिसकी रूह में विटामिन नहीं होगा, तो वो तो ये सोचना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो अल्लाह के नबी यहां खत्म नहीं की बात, बल्कि फौरन वो भी बता दिए कि किस तरीके से ये तेरी बॉडी कर सकेगी और तू सोच सकेगा इस बात को। बात समझ नहीं मेरी? पहले बताई मियार कि हर मोमिन की जिंदगी का ये मियार होना चाहिए और है कि उसका कोई काम भी ऐसा ना हो जो अल्लाह, अल्लाह को, रसूल को नाराज करने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करने वाला, यानी क्या, उसका काम महतैद हो अल्लाह के हुक्म के और इत्तबाए रसूल के, सुन्नत के साथ हो काम। तो फरमाया ये स्टैंडर्ड है हमारा, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपकी रूह को तो फिर बहुत ताकत होना चाहिए ना, जान होगी तो हम इस पर अमल कर सकेंगे ना। जैसे किसी से कह जाए इतना वेट उठाए, कभी मैं पहले जान तो देख लूं पर मैं इतना वेट उठा सकता ही नहीं, उठा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे कमजोरों के लिए उसके लिए इलाज भी बता दिया फौरन, क्योंकि जब तक अंदर वो चीज विटामिन तुम्हारा नहीं होगा, रूह मजबूत नहीं होगी, ये तो रूह का तरह ताल्लुक है ना इससे, तो ये काम कर कैसे सकेगा इंसान? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसी वक्त नसीहत के साथ, दूसरी बात जो फरमाई फरमाया, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, ये सुनने की बात फरमाया, हाँ हाँ, वस्कुरुल्लाह कुल्ले हजर व शजर, साथ ही कह दिया वस्कुरुल्लाह कुल्ले अंदा कुल्ले हजर व शजर, होना ये चाहिए तुझे कि तू कसरत नहीं फरमाई, यहां कसरत जिक्र नहीं कहा, देखें क्या खूबसूरत तरीके से दूसरे अंदाज से अल्लाह ने जिक्र का हुक्म फरमा रहे, कसरत नहीं कहा, उससे भी ज्यादा नजर आता है कि तू इतना जाकिर हो अल्लाह को इस तरह याद कर के हर हजर और शजर, हर पत्थर और दरख्त के कोई भी ऐसा ना हो जिस जहां से तू गुजरे और तेरा अल्लाह का जिक्र ना करना। इतना बड़ा जिक्र है, ये तो कसरत से भी ज्यादा है। क्या फरमाए? हर हजर और शजर। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको इस पे बात करूं, हम हजर और शजर से समझे हैं एक ही बात समझाई ना, हमें हजर से और शजर से मुराद यही है कि मिट पत्थर पहाड़ या कोई टीला ईंट पत्थर, और शजर से क्या हम समझे? दरख्त। उनको गवाह बनाए कि हर दरख्त जिसके पास से आप गुजरें तो आपका जिक्र होना चाहिए, हर वक्त नहीं गुजर सकता। आज आप कितने आदमी किसी दरख्त के पास से गुजरे होंगे, मुझसे तो कार पे सड़क से गुजरे होंगे, सड़क में बहुत ही कम होती चीज। तो यहाँ समझें, ये तो अलग हदीसें हैं मार्फत, इनके तो अंदाजे ही क्या है इसकी खजानों का। अल्लाह ने ऐसा बंद कर दिया कि फरमाया दो जिन्स होंगी जिंदगी में इंसान की जहाँ तो जिक्र करना है, वो क्या? हजर। या तो मिट्टी के जिन्स से होगी चीज बनी हुई, हजर मिट्टी है ना, दरख्त शजर, या दरख्त से बनी हुई कोई चीज होगी। तो मुझे बताएं कोई जगह ऐसी है जो मिट्टी और दरख्त की बनी हुई चीज से पाक? इसी मस्जिद को देखें, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, घर को देखें, बाहर देखें, दुकान देखें, हर चीज में ये दो चीजें आपको मिलेंगी, लकड़ी भी होगी और क्या होगा? मिट्टी भी होगी। देखा आपने कैसा मार्फत है अल्लाह के नबी के बातों में और कुरान के अंदर, सुभान अल्लाह, बिल्कुल पहली दफा ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन है इसकी। देखिए तो पता ये चला कि हुक्म ये है कि कोई जगह ऐसी ना हो, या तो ऐसी जगह हो जहां मिट्टी ना हो और जहां लकड़ी की कोई चीज ना हो, तो बेशक मुझे याद नहीं करो, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला कि हाओ सख्त है नहीं, जहां भी तू होगी मिट्टी भी होगा या दरख्त हो, वो दरख से बनी हुई लकड़ी से बनी हुई कोई चीज होगी। तो यानी इतना कसरत से जिक्र करके कोई जगह भी चप्पा चप्पा जो जमीन का है उस चप्पा की तरह अल्लाह का जिक्र हो तो जिक्र करता हो। क्यों क्यों कहा अब सुने, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र वाहिद एक ऐसी चीज है जिसकी खासियत यह है, जिस हर चीज की खासियत है, हर चीज की खासियत है। अल्लाह ने अपने जिक्र में एक खासियत रखी है कि इससे अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। क्या पैदा होती है? इससे क्या पैदा होगी? अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। जैसे जैसे इंसान जिक्र करता चला जाएगा मोहब्बत अंदर आती, वो विटामिन अंदाज शुरू हो जाएगी। ये विटामिन कमी हो ना आदमी के अंदर, रूह के लिए यही चाहिए ना विटामिन, मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत वो आना शुरू हो जाती है, विटामिन बढ़ना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह जिक्र कसरत से करता रहेगा मोहब्बत का विटामिन बढ़ता रहेगा। जब मोहब्बत का विटामिन बढ़ेगा रूह ताकत होती चली जाएगी, रूह ताकतवर होगी वो गुनाह नहीं कर सकती बल्कि नेक काम करना शुरू हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बारे में हदीस है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरत क़यामत के रोज हशर के मैदान में उनके चेहरे चौदहवीं की रात की तरह चमक रहे होंगे। दुनिया में हिसाब करके जाएंगे अल्लाह के फजल से, ना उनके गुनाह होंगे अल्लाह के फजल से, गुनाहों को मिटाते हुए जाएंगे। उनकी रूहें इतनी मजबूत होंगी कि चेहरे उनके नूर की तरह चमक रहे होंगे उस हशर के मैदान में। आपको पता है हशर के मैदान होगा क्या, क्या मामलात होंगे वहां? उस मुकाम पर अल्लाह के जिक्र करने वाले ऐसे मुतमिन होंगे कि उनके नूर चेहरों से टपक रहे होंगे, दुनिया देख रही होगी चेहरों पर। इसलिए अल्लाह का जिक्र करते हैं। आप खुद तजर्बा करके देखें, जैसे जैसे जिक्र करते चले जाएंगे किसी को बताने की जरूरत नहीं, बेशक आप किसी ने वो गुनाह बताया ना हो, आपको खुद उस गुनाह से नफरत होना शुरू हो जाए। जब तो बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि जिक्र की निशानी यही है, जिसने देखा है कि मेरा जिक्र बहुत मकबूल हो रहा है और काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज से देख सकता है कि उसको गुनाहों से नफरत कितनी हो रही है, गुनाहों से भाग कितना रहा है, और जिंदगी किधर आ रही है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आ रही है, अल्लाह के हुक्म और तबाए रसूल की तरफ आ रही है उसकी। उसको किसी वायस की जरूरत नहीं होती, उसको किसी वायस की जरूरत नहीं, किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, खुद रूह से वो काम कराती है। मुतमईन नहीं होगी रूह, आप कोई गुनाह करें रूह आपकी मुतमईन नहीं होगी, क्योंकि रूह पसंद नहीं कर रही उस चीज को, और जिस चीज को रूह नहीं पसंद करेगा वो काम कर कैसे सकते हैं? सवाल ही पैदा, आपके हाथ रुक जाएंगे, आपका जिस्म रुक जाएगा, आपकी निगाहें रुक जाएंगी, आप चाहेंगे वो शैतान नफ्स काम करेगा, डिजायर पैदा करेगा, लेकिन रूह इतनी ताकतवर होगी वो थप्पड़ मारेगी उसको भगा देगी। चंद लम्हे के लिए कैफियत आती है इंसान, चंद लम्हे के गुनाह करने की कैफियत उभरेगी इंसान की, अल्लाह जिक्र करने वाली बात कर रहा है, जिक्र करते हैं उनमें भी कैफियत तो उभरेगी उस मर्द में, सौरत में, चल यार कर लेते हैं, हजारों चांस होते हैं, अंधेरा होता है, रोशनी होती है, कोई नहीं देख रहा होता, मौका होता है, फायदा नजर आता है, हजारों चीजें जिंदगी में नजर आती हैं। तो वो क्या है, वो शैतान उभारता है उसको, नफ्स उभारता है कि चल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, काम जिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूह इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत से होती है कि जैसे वो उसको उभारता है रख के थप्पड़ मारती है, भगा देती है उसको, इंसान फौरन आंख खुल जाती है उसकी, इस्तग़फ़ार करता है। उस रूह ऐसी बन जाती है, उसको किस चीज में इत्मीनान मिलता है? उसको इत्मीनान मिलता है तो फिर अल्लाह की इबादत में मिलता है, उस वक्त उसको नमाज में मजा आता है, उसको कोई नहीं कहेगा लेकिन उसको नवाफिल में मजा आना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो नफिल की तरफ बढ़ेगा, तहज्जुद की खुद आंख खुलेगी उसकी, उसको दिल करेगा या मैं खुद थोड़ा सा कुरान पढ़ लूं, तिलावत कुरान कर लेते हैं यार, चलो बैठे हैं थोड़ा यार और जिक्र कर लेते हैं, ये इसकी रूह से बातें शुरू हो जाती हैं खुद करना। आप देखिए, मैं भी अपने आप को कैफियत को देखें, तो जब ये कैफियत होती है इंसान की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दलील मिलती है उस चीज की कि अल्लाह की मोहब्बत आ गई है। पैसे अब जो कहते फिरते हैं हमें तो अल्लाह की मोहब्बत है, हम नमाज पढ़ते हैं, हम फलां करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? कुल इन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, भाई तुम दावा जो कर रहे हो ठीक है, तुम कहते हो बड़ी इबादत करते हैं, सब कुछ कर रहे हो, तुम दावा कर रहे हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, दावा है ना, अल्लाह कहता है तुमने दावा किया है ना, इसकी दलील दो। सुभानअल्लाह, बोलो सुभानअल्लाह। हर दावे की एक दलील होती है, हमने दावा कर रहे हैं कि हमें तो मोहब्बत है, तभी तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें मोहब्बत है, हम ये कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, कहते बिल्कुल ठीक है, ये दलील नहीं है इबादत करना, मेरी मोहब्बत की दलील नहीं है, मेरी मोहब्बत की दलील जो है वो मैंने खुद बताई है। ये तो दावा है तुम्हारा, हर आदमी दावा कर सकता है, लेकिन दलील तो अपनी दावे की तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या दलील? फत्ता भी ऊनी, बोलो सुभान अल्लाह। ये आंसू, ये नारे, ये सब कुछ, ये सब अपनी जगह है, लेकिन कहता है मुझे दलील चाहिए। उसकी दलील क्या है मेरी मोहब्बत की? फत्ता भी ऊनी, मेरे हबीब की तबाह है, सुन्नत पे चलना। जो सुन्नत शरीफा पे चलेगा, जिसकी जिंदगी की सुन्नत पे होगी, वो दलील है इस चीज की कि अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह ये दलील मानता हूं, ये दलील दुनिया में मानूंगा और आखिरत में मानूंगा। जब आखिरत में तुम मेरे पास आओगे और तुम अपने आप को शोक हो गए, हम तो इश्क करते थे, हमने फलां किया फलां किया फलां किया, अल्लाह ताला कहते तुमने मेरे लिए किया जी, आपके लिए किया, दलील। तेरे दिल में जर्रा भर मोहब्बत नहीं थी, तुम उससे मोहब्बत नहीं करता था, पता नहीं क्यों करता रहा ये बातें सब कुछ। ये क्या थी इबादत का मतलब तेरा क्या था? अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता तो तेरी दलील होनी चाहिए थी। वो दलील क्या थी? फत्ता भी उन्हें मेरे हबीब की तो सुन्नत पे अमल करता, तेरा जाहिर से लेके अंदर तक, जाहिर भी और अंदर भी मुकम्मल तबाही रसूल पर होता। ये तो नफ्स की जिंदगी थी तेरी, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, कभी चेहरा ऐसा बना लिया, कभी लिबास ऐसा बना लिया, कभी शक्ल ऐसे बना ली, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, डिफरेंट वे में तो घूमता रहा। कोई मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत मेरी हो, अल्लाह ताला कहे मोहब्बत मेरी हो और तू मेरे हबीब की नकल ना करे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ईमान ही तुझे इस कलमे पर दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिससे अहद मैंने ये लिया था कि हुक्म मेरा होगा, इत्तबा मेरे हबीब की होगी, मैंने तुझसे अहद लिया था। पहला अहद मेरा ये था तुझे ईमान पर लाने का, तूने तो जिंदगी बेकार की अपनी। तो दो तीन चीजों को हमें नसीब मिलती है दोस्तों। नंबर एक, अल्लाह अकबर, हम अपनी जिंदगी की तजिया करें तो वाकई हमारी जिंदगी तबाय रसूल पर है, गुनाहों से हम बचे हुए हैं। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल मान जाएं कि हमें मोहब्बत की कमी है, अल्लाह पाक हमें मोहब्बत नहीं है नबी अल्लाह ताला से, हम नफा के हमारे अंदर हम झूठे हैं। और क्योंकि ये तो बहुत जल्दी रास खुल जाएगा, दुनिया तो चल रहा है, काम चलता रहेगा, जाहिर कर रही है ये बात, मेरे गुनाह जाहिर कर रहे हैं कि घर में मेरे साथ कुछ होता है, बच्चों में कुछ करता हूँ, बाहर मेरे फैसले कुछ होते हैं, इसको देख के कुछ करता हूँ, कि मुझके मेरे अंदर जो है वो कैफियत नहीं चाहिए, गुनाहों से नहीं बच रहा। नंबर एक, गुनाह से नहीं बचता इस बात के सबूत है कि मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। तो उसके लिए इलाज क्या है? अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, चुप करके इलाज को पकड़ ले आदमी, कसरत के साथ अल्लाह के जिक्र को किया जाए, और जिक्र की भी जितनी बहुतात हो सकती है जिक्र को करें, और जिक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी जिंदगी का मुआयना करें, अब मुझे गुनाह से कितनी नफरत होना शुरू हो गई है, सरकारी दस्म से कितनी मोहब्बत होना शुरू हो गई है, आपकी सुन्नतों से मुझे कितनी मोहब्बत अमल मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गई। जैसे जैसे आना शुरू हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करते जाए और जिंदगी गुजारते जाएं कि वाकई अल्लाह की मोहब्बत मेरे में आ रही है। ये है मेरे दोस्तों एक निशानी जो अल्लाह के नबी ने बताई, जो हुक्म यही दिया है, जो साहबी ने हुक्म दिया कि हर बात में अपने आप को जाँच कर लो कि मैं अल्लाह के रसूल के मुताबिक कर रहा हूँ, काम हुक्म है उनका ये करने का, नहीं यार देखी जाएगी चलो क्या फ़र्क पड़ता है फिर कर लेंगे, ये मोमिन की जिंदगी दोस्तों नहीं है, ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखा हो जो आखिरत में खुलेगा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला ये बातें जो हदीसें और कुरान में आती हैं तो आप समझें, जिस तरह सुनते हैं अपने दिलों में उतारें, उस पर अमल भी लाएँ, अपनी ज़िंदगी में लाएँ, आखिरत कब्र हशर और सारे मैदानों से अपने आप को महफूज करने के लिए उन हदीसों पर अमल करें जो अल्लाह के नबी ने हमें इलाज बताएँ। वाह खुदा अलहमदिल्ला।